In progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. سورہ انعام کی ان آیات جو کہ ابھی تلاوت کی گئیں، ان کی معارف و مسائل ہم آج کل معارف القرآن کی جلد نمبر 3 میں سے پڑھ رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 280 تک ہم پچھلی کلاس میں یعنی کل پہنچ گئے تھے. اس میں جو ایک بات ہوئی تھی پچھلی کلاس میں پچھلے صفحے کے اوپر کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا، اس کے معارف میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کری تھی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک خاص مقدار سے پیدا فرمایا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کیے گئے. یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ و روپ، اخلاق و عادات میں مختلف ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے رنگ و روپ بھی مختلف ہیں، لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہیں. تو اس کے تحت ساجد نے ایک بات کری تھی کہ انسان جس جگہ رہتا ہے، جس قسم کی زمین میں رہتا ہے، زمین پر رہتا ہے، جس قسم کے ماحول میں رہتا ہے، یعنی فزیکل ماحول کی بات ہو رہی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، تو اس ماحول کا بھی جو ہے نا وہ انسانوں پر اثر پڑتا ہے. اور یہ جو اثر ہوتا ہے یہ پوری کی پوری کمیونٹیز کے اوپر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بچہ جو ہے وہ جس ماحول میں پیدا ہوا وہاں پہ وہ پلا بڑھا، تو اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں اور اس کے جو جاننے والے ہیں، تو وہ اس کے اوپر اثر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ یا تو مسلمان بن جاتا ہے یا پھر وہ عیسائی یا یہودی یا نصارہ مجوسی کوئی بن جاتا ہے. حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہو گیا نا وہ انڈیویجول ماحول، ہر انسان کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ کسی بھی علاقے کے اندر ہر گھرانے میں مختلف مختلف ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس پورے کے پورے ٹرف کا ماحول، ٹھیک ہے، پورے کے پورے ٹرف کا ماحول. جیسے کل بتایا تھا کہ جن علاقوں میں سخت پتھریلی زمین ہے، تو اب یہ پتھریلی زمین تو بہت بڑے ایریے میں ہوتی ہے نا، تو اس پورے ایریے کے انسانوں کا ایک خاص مزاج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو صحرا کے علاقوں میں رہتے ہیں وہاں کے انسانوں کا ایک اوور آل مزاج بن جاتا ہے. جو نرم زمین پر رہتے ہیں یعنی آبپاشی والی زمین، دریاؤں سے اریگیٹڈ جو لینڈز ہوتی ہیں، وہاں کے لوگوں کا ایک الگ مزاج بن جاتا ہے. جنگلوں میں رہنے والوں کا ایک الگ مزاج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ایک لارجر ماحول ہے، لارجر یعنی انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی اہمیت جو یا جس بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ دراصل یہ تھی کہ اگر ہم ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، ٹھیک ہے، کہ فلانا شخص جو ہے وہ فلاں ماحول سے یا فلاں علاقے سے آیا ہوا ہے، تو اس کی طبیعت جو ہے نا وہ ایسی ہے کیونکہ اس علاقے کے رہنے والوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے. تو اب ہم جو دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دین کی بات، دین کا میسج اس تک پہنچانے کے جو محنت کر رہے ہیں، تو وہ ہم اس کے مطابق ट्वीक कर सकेंगे, उसके मुताबिक उसको कस्टमाइज कर सकेंगे, उसके मुताबिक उसको जो है वो पिच कर सकेंगे। सारी अंग्रेजी के मुख्तलिफ टर्म्स हैं, मकसद सारा का सारा यह है कि मुखातब के हिसाब से मैसेज पहुंचाना, राइट। बलागुल मुबीन, ये आजकल बहुत ज्यादा हमारे यहाँ मुस्तकिल बार बार जो है ये बात मैं रिपीट कर रहा होता हूँ, और आप लोग भी माशाल्लाह सब कुछ उम्मीद है कि हिफ्ज हो गई होगी कि बलागुल मुबीन। तो बलागुल मुबीन में ये चीज शामिल है कि आप बंदे बंदे के हिसाब से बात करें, ठीक है ना। तो अब वो यानी एक सख्त मिजाज की जगह से आया हुआ है तो उससे जो है वो उसके हिसाब से बात की जाए, एक जो है वो बहुत ही नरम तबीयत वाले मिजाज से आया हुआ है तो उससे जो है वो उसके हिसाब से जो है वो बात की जाए, ठीक है। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक किस्म की दावत कहलाती है, इसको सेल्स टेक्निक्स भी अंग्रेजी जुबान में और आजकल के उसमें कहा जा सकता है कि हर बंदे के लिए एक अलग सेल्स टेक्निक इस्तेमाल होती है। हम तो यहाँ पर आखिरत सेल कर रहे हैं, जन्नत सेल कर रहे हैं। सबसे अजीम प्रोडक्ट है ये, सबसे अजीम जो है वो ये सर्विस है, जन्नत को सेल करना, जहन्नुम से निजात को सेल करना, ठीक है। तो ये मामूली बात नहीं है, तो सबसे अहम बात है। तो इसके लिए तो सबसे ज्यादा हमें मेहनत करने की अपने मैसेज के ऊपर जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी बात जो कल क्लास में हुई थी, वो कसरत से अपने आसपास अपने गिर्द मौत को जब इंसान देखता है, ठीक है, तो उसको जो है ना फिर मौत से इबरत पकड़नी चाहिए, कफा बिल मौत वाइज़न, ठीक है। तो उसमें फिर बात होते होते जो है वो दक्तूर साहब भी जो है वो डॉक्टर हजरात भी जो है बीच में लपेट में आ गए थे, ठीक है। इन बिजनेस, इन्होंने लिखा है मर्दों में कि इन बिजनेस एजिलिटी टर्म्स इन द वेस्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर पर्सनलाइजेशन, सुभान अल्लाह, यानी पर्सनलाइजेशन भी ऑन अ वेरी हाइपर स्केल, ठीक है। हम कहते हैं कोई बंदा हाइपर हो गया है, बहुत ही ज्यादा ओवर हो गया है, तो इन्होंने बिजनेस एजिलिटी में टर्म बनाई हुई है कि हाइपर पर्सनलाइजेशन, ठीक है, यानी बहुत ही हर हर बंदे के हिसाब से। अब देखें पिछले दिनों हमारे जुम्मे के बयान के अंदर भी ये बात हुई थी, किसी आप में से जिन्होंने सुना होगा वो याद होगा कि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वगैरह, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये हर बंदे के हिसाब से उसको जवाब देते हैं। तो हमारे एक शेख साहब के कोई दूसरे खलीफा साहब हैं, उन्होंने अपने मैसेज में लिखा कि जी मेरे दोस्त ने मुझे जो है ना वो चैट जीपीटी के बारे में बड़ी बातें बताई, तो मैंने सोचा चलो मैं भी टेस्ट करता हूँ चैट जीपीटी को। तो मैंने जो है ना चैट जीपीटी को ये सवाल लिखा कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के तरीके क्या हैं, तो चैट जीपीटी ने जवाब में जो है वो उनको 7-8 या कोई 10-12 पॉइंट्स लिख दिए, और बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट्स जो कि हमारे मशाइख के बताए हुए, यानी सदियों से जो हमारे मशाइख के बताए हुए पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स चैट जीपीटी ने जवाब में उनको लिखे। अल्लाह की मोहब्बत ऐसे हासिल करनी चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और उन पॉइंट्स में से जो पांचवा पॉइंट था वो ये था कि पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातहुम जैसे अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। पीर नक्श जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी जैसे अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए। तो भाई वो बहुत खुश हो गए, ये तो हमारे पीर साहब को जो है ना वो चैट जीपीटी भी जानता है। तो उन्होंने जो है वो पीर साहब के जितने भी खुलफा थे उन सब के साथ ये शेयर किया मैसेज कि भी चैट जीपीटी भी हमारे हजरत को जानता है। सब बड़े खुश। थोड़े दिन के बाद जो है वो हमारे घर में बात हुई, भाई साहब से हमारी बात हो रही थी, भाई साहब के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि मुझे लगता है कि ये जो चैट जीपीटी है ना, ये बंदे को पहले खंगालता है फिर उसके हिसाब से उसको जवाब देता है, ठीक है। तो हमने फिर टेस्ट किया कि हमारे भतीजे साहब जो हैं उन्होंने नया नया जो है वो सेलफोन वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो उनके फोन के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं थी जिनका जिससे कि चैट जीपीटी को पता चले कि ये पीर जुल्फकार अहमद के मुरीद हैं। तो उसने भी यही सवाल लिखा अपने फोन के ऊपर चैट जीपीटी पर, तो उसको भी अल्लाह की मोहब्बत के वही तरीके उसने बताए, सिवाय इसके कि पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी का इसमें कोई जिक्र नहीं था, कोई जिक्र नहीं था हजरत जी का उसके अंदर, ठीक है ना। क्यों? इसलिए कि उसको उस बच्चे के फोन में वो, अब तो खैर बच्चे बच्चों के पास तो फोन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो तो अच्छा खासा बड़ा लड़का हो चुका है, ठीक है, तो उस लड़के के फोन में उसको कोई ऐसी चीज नहीं मिली, ठीक है ना। तो उसने इस जवाब में जो है वो पीर जुल्फकार अहमद का नाम नहीं लिया, ठीक है। हाइपर पर्सनलाइजेशन, हाइपर पर्सनलाइजेशन, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब ये काम कर सकती है, तो नेचुरल इंटेलिजेंस और गॉड गिवन इंटेलिजेंस जो है वो ये काम क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट खुदा दाद इंटेलिजेंस दी हुई है ना, तो हम उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम डिपेंडेंट होंगे ना, ये असल में यही हो रहा है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। असल में यही हो रहा है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के जितने भी टूल्स हैं उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट किया जा रहा है कि आप गॉड गिवन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना बिल्कुल ही छोड़ दें। और जिस चीज को भी आप इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, तो वो चीज जो है ना फिर शट डाउन मोड में चली जाती है, शट डाउन मोड में चली जाती है। और इसको रूहानी दुनिया में ये कहा जा सकता है कि अल्लाह की दी हुई फिर वो नेमत जो है ना, जब आप उसकी कदर नहीं कर रहे होते तो वो आपसे वापस ले ली जाती है, वो नेमत अल्लाह ताला फिर वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस बात का बहुत ख्याल रखें, ये बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, अब हमसे ये काम भी करवा सकते हैं, वो काम, खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो है ना, फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, कोई चीज आपके पास रहेगी नहीं, सारा का सारा फिर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे इन्हीं सारी चीजों के ऊपर, जैसे कि दुनिया में हो रहा है। ठीक है, अपने को तो बचाएं ना, दुनिया की फिक्र छोड़ें, दुनिया में जो हो रहा है वो सो हो रहा है, अपने आप को तो बचाएं, अपनी औलाद को तो बचाएं, ठीक है, जितना बचा सकते हैं। बहरहाल, तो मौत के बारे में कसरत से बात हुई, अभी वो चल रही है इसके अंदर, तो फरमाते हैं कि इसके बाद पूरे आलम की इंतहा यानी कयामत का जिक्र इस तरह फरमाया, वह अजलुम मुसम्मन इंदहु, यानी एक और मियाद मुकर्रर है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, उसकी मियाद का पूरा इल्म ना किसी फरिश्ते को है और ना किसी इंसान को है। ठीक है, कयामत कब आएगी इसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को इल्म नहीं दिया। यानी जो जाती कयामत आती है ना, शख्सी इंतहा, तो वो तो हम यानी फरिश्ते भी ऑब्जर्व करते रहते हैं, इंसान भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, अंदाजा हो जाता है कि हाँ भाई अब ये गए, अब ये इन्होंने नहीं बचना। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो यानी एक नोन रियलिटी है, ये अजीब बात यह कि हम उसको भी भूल जाते हैं। लेकिन कयामत की कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है किसी के पास कि एक दफा पहले भी कयामत आ चुकी है या 4-5 दफा पहले भी कयामत आ चुकी है, तो अब उनके पास जो है ना वो एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई कयामत ऐसी होगी। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत को ऐसा बनाया है कि हर एक की निगाहों से ओझल करके रखा हो, उसका क्या हाल होगा, ठीक है ना, और उसका क्या वक्त होगा। हाल तो कुछ बता दिया थोड़ा थोड़ा करके, कुरान मजीद और हदीस मुबारक में बता दिया कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन वक्त तो बिल्कुल ही किसी को नहीं बताया। क्या चीज होगी वो कयामत ना? खुलासा कलाम ये है कि पहली आयत में आलम अकबर यानी पूरी दुनिया का हाल ये बताया गया कि वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई और बनाई हुई है, और दूसरी आयत में इसी तरह आलम असगर यानी छोटा आलम यानी इंसान का मखलूक खुदावंदी होना बयान फरमाया। ठीक है, यानी ये जो आयात हैं पहले के, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध व जअल अज़ुलुमाति वन नूर, ठीक है ना, तो इसमें जो है वो बाहर की दुनिया का बताया, फिर अंदर की दुनिया का, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन, ठीक है, तुम्हें जो है ना वो अल्लाह ताला ने गीली मिट्टी से बनाया। क्या इन्होंने सवाल लिख दिया है कि पहले दिन का चांद सामने देखा जाएगा तो कहा जाएगा कि ये 2 रातों का चांद है, इसका मतलब समझा दीजिए। वो जो हदीस आप लोगों के साथ शेयर करी थी अचानक मौत के बारे में जो हदीस है ना, तो उसमें पहला हिस्सा ये था कि कयामत, क़ुर्बे कयामत में ऐसा ऐसा होगा ना कि पहले दिन का चांद देखा जाएगा तो कहा जाएगा कि 2 रातों का चांद, इसका मतलब ये है कि लोग जो है ना वो इसी किस्म की फजूल बहसों के अंदर उलझे रहेंगे। यानी आप देख लेना, ये एक टेबल टॉक जो हमारे यहाँ टेबल डिस्कशंस होती है ना, ड्राइंग रूम डिस्कशंस, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रेवलेंट डिस्कशन होती है हमारे ड्राइंग रूम्स के अंदर, खुसूसन मर्दों में, औरतों में जो है वो मैचिंग और कॉन्ट्रास्ट, हमारे अजीजी बेबी बार बार कह के गए, मैचिंग और कॉन्ट्रास्ट, मैचिंग और कॉन्ट्रास्ट, खवातीन में ये डिस्कशन होती है। मर्द जब आपस में बैठते हैं मिल करके, तो वहां पे क्या डिस्कशन होती है? सियासत, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बड़ी डिस्कशन सियासत होती है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानियों की होती है क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट का भी डिस्कशन होती है। और तीसरी डिस्कशन जो है ना वो इसी तरह के, तीसरी खैर बहुत सारी दूसरी टाइप्स की हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक ही होती है कि जब रमजानुल मुबारक आ रहा होता है या ईद जो है ना वो आ रही होती है, तो जो है ना वो चांद सही देखा गया कि चांद गलत देखा गया, इसके ऊपर जो है वो ड्राइंग रूम डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है ना। तो हदीस मुबारका में यही बताया गया है कि ये लोग गोया के ड्राइंग रूम में बैठ करके यही बात करते रहेंगे कि चांद गलत देखा गया है कि चांद सही देखा गया है ना। जब दूसरा चांद जो है वो ऐलान हो जाएगा और जो है वो ईद मना लेंगे, तो फिर जब शाम आएंगे ना, तो शाम को जब चांद देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो जो है ना ये तो दूसरे दिन का चांद है, या तो ये तो तीसरे दिन का चांद है, ठीक है, यानी देखने में जो है वो लोगों ने गलती करी है। तो ये जब इंसान की जिंदगी में मकसदियत खत्म हो जाती है ना, तो इसी किस्म की फजूल डिस्कशंस करता है, ये कुर्बे कयामत की अलामतों में से एक अलामत है, ठीक है ना, एमलेस डिस्कशंस, ठीक है जी। इन्होंने लिखा है कि सही कह रहे हैं कि सियासत का मेरे घर में बहुत जिक्र होता है मर्दों में जी, बस वही जिसमें कोई को लेना देना कुछ नहीं ना, फायदा वायदा किसी का कुछ नहीं होता, तो वही डिस्कशन है वो कर रहे होते हैं बैठकर। एनीवे तो फरमाते हैं कि फिर इंसान को गफलत से चौंकाने के लिए ये बताया कि हर इंसान की एक खास उम्र है जिसके बाद उसकी मौत यकीनी है, और ये ऐसी चीज है कि उसका मुशाहिदा हर इंसान अपने गिर्दो पेश में हर वक्त इंसान को होता रहता है। वह अजल मुसम्मन अंदहू में ये हिदायत की गई है कि इंसान की शख्सी मौत से पहले आलम की अमूमी मौत यानी कयामत पर इस्तेदलाल एक फिक्री और तबई अमर है, इसलिए कयामत के आने में किसी शक की गुंजाइश नहीं है। इसलिए आखिर आयत में बतौर इस्तेबाद के फरमाया तुम अंतुम तम तरून, यानी ऐसे वाजह दलाइल होने के बावजूद तुम कयामत के बारे में शुबहात व शकूक निकालते हो, ठीक है, यानी तुम छोटी कयामत आते हुए मुस्तकिल देख रहे हो, ये दलील तुम्हें मिल रही है कि कैसे अल्लाह ताला किसी का चैप्टर क्लोज कर देते हैं। कोई शख्स जो है वो 80 साल दुनिया में रहता है, कोई 100 साल दुनिया में रहता है, 100 साल में कितने घंटे कितने मिनट कितने सेकंड उसने गुजारे हैं, क्या क्या चीजें उसकी जिंदगी के अंदर आई होती हैं, लेकिन जब मौत आती है बिल्कुल शट ऑफ, बिल्कुल रैप हो जाता है उसकी पूरी की पूरी जो है ना वो जिंदगी का मामला, ठीक है, चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो ये कयामत ही तो है ना, उस बंदे की कयामत शुरू हो गई, उसके बाद उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है कब्र के अंदर, मुनकर और नकीर के सवाल सवाल के जवाब देने होते हैं उसको। तो ये अल्लाह ताला ने कयामत के लिए, लेकिन आखिर आयत में बतौर इस्तेबाद के फरमाया कि फिर भी ना तुम इस चीज को नहीं समझते हो, बईद, ठीक है, तो इसको बहुत दूर समझते हो तुम, ऐसे कहते हो कि जैसे ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत, ये कयामत तो रहने दो भाई, ये तो नहीं आने की है, या ये आने की है तो बहुत दूर में है भाई, किसी वक्त भी आ सकती है। और वक्त का गुजरना, 80 साल की उम्र हुई और जब गुजर गई तो ऐसा लगता है कि जैसे 1.5 दिन में गुजर गई, 1 दिन में गुजर गई, ठीक है। तो उसी तरीके से जिस तरह किसी की जिंदगी के 100 साल जो है वो ऐसे, अब देखें ना हमारे में, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की उम्र 40 साल है, पीछे मुड़ करके देखें ये 40 साल कैसे गुजरे हैं आपके, सोचें जरा, आंख बंद करके सर को झुका करके, राइट, और दुनिया दुनिया से हटकट करके थोड़ी देर के लिए मुराकबा करें कि मेरे ये 40 साल कैसे गुजर गए, कितनी देर में गुजर गए, ठीक है, तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे कि ये आनन फानन गुजर गए। तो जिस तरह 40 साल आनन फानन गुजर गए, उसी तरह 4,000 साल भी आनन फानन गुजर जाते हैं, 400 साल भी आनन फानन गुजर जाते हैं, ठीक है। तो ये मत समझो कि ये बहुत दूर है, ये तो करीब है। इक्तरबत अस्साअतु वन्शक्कल क़मर, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कयामत करीब आ गई जब ये शक्कुल कमर का मौजज़ा नबी अलैहिस्सलाम ने दिखा दिया, ठीक है। तो शक्कुल कमर तो आज से 1446 प्लस 5 ईयर्स और आप कर लें तो इतने साल गुजर चुके हैं शक्कुल कमर को, और अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं इक्तरबत अस्साअत, कयामत का जो साथ है वो करीब आ गई है। तो ये दूर की चीज नहीं है, बहुत करीब की चीज है। तीसरी आयत में पहले दो आयतों के मजमून का नतीजा बयान फरमाया है कि अल्लाह ही वो जात है जो आसमानों और जमीन में लायक इबादत व अताअत है, और वही तुम्हारे जाहिर व बातिन के हर हाल और हर कौल फ़ेल से पूरी तरह वाकिफ है, ठीक है। यानी ये जो फरमाया कि वहुवल्लाहु फिस्समावाति व फिल अर्ज यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून, आसमान और जमीन के अंदर वही वो अल्लाह ही है क्या, वो अल्लाह ही है क्या, यालमु सिर्रकुम व जहरकुम, जो इल्म रखता है तुम्हारी छुपाई हुई चीजों को भी और तुम्हारे जाहिर की हुई चीजों को भी और तुम्हारे अमलों से भी वाकिफ है, फेलों से भी वाकिफ है। चौथी आयत में गफलत शियार इंसान की हठ धर्मी और खिलाफ हक जिद की शिकायत इस तरह फरमाई की गई, यानी अल्लाह ताला शिकायत कर रहे हैं इंसान की कि मुझसे गाफिल हो और जमे हुए हो मेरी मुझसे गफलत पर, कि तुम्हें जो है वो जगाया जा रहा है, तुम्हें तुम्हें कैसी कैसी दलाइल दिए जा रहे हैं, कैसी कैसी चीजें तुम्हारे सामने खोली जा रही हैं, लेकिन फिर भी तुम गाफिल रहने के ऊपर मुसर हो, तो इसका मतलब क्या है कि तुम कितने जिद्दी हो, तुम कितने जिद्दी हो, कितने हठ धर्म हो। ठीक है, तो वो इस तरह से फरमाया कि वमा तातीहिम मिन आयतिम मिन आयात रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन, यानी अल्लाह ताला की तौहीद के, यानी अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट करने के, अल्लाह ताला की सोल अथॉरिटी, राइट, अल्लाह ताला की यानी अकेले तौहीद, वाहिद, अकेले हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाले, राइट, अकेले हर चीज का जो है वो असल सबब, तो उसकी वाजह दलायल, इस बात के वाजह दलायल और खुली निशानियों के बावजूद, वाजह दलायल क्या होते हैं, जो कि इंसान के अकल को यानी सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, अकली तौर पर वो उनका इनकार ना कर सके, जुबान से झूठ इनकार तो करे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन असल में उसको समझ में आ चुका है, अब सिर्फ जिद की वजह से कह रहा है या बस होता है ना नहीं मान के देना, तो इसकी वजह से कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया, वरना तो बिल्कुल क्लियर बात थी वो, उसको भी समझ में आ गई, दूसरों को भी समझ में आ गई। तो इन सब के बावजूद मुनकर इंसानों का ये तरीका इख्तियार रहा है, कि ये तरीका इख्तियार कर रखा है मुनकर इंसानों ने, कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भी निशानी उनकी हिदायत के लिए भेजी जाती है वो उससे मुंह फेर लेते हैं, उसमें गौर नहीं करते। ठीक है, अब दरस कुरान हमारे जमाने में क्या हमारे पास नबी अलैहिस्सलाम आकर के कुरान मजीद की आयात तिलावत करके तो नहीं सुनाएंगे ना, राइट, नबी अलैहिस्सलाम आकर के हमें जो है वो बाजार के अंदर रोक करके है? अब तो तबलीगी जमात वाले भी ज्यादा से ज्यादा यही कहते हैं कि चले मस्जिद चले मस्जिद चले, ठीक है, तबलीगी जमात वाले, और तो कोई ये वाला काम भी नहीं कर रहा कि चले भाई मस्जिद चले, बाजार में आकर के किसी को लेके जा रहा है, किसी को घर में आकर के खटखटा करके लेकर के जा रहा है, कोई ऐसे करके है, नबी अलैहिस्सलाम तो पकड़ के मस्जिद ही लेकर के जाते, नबी अलैहिस्सलाम तो वहीं पे यतलू अलैहिम आयाती, यतलू अलैहिम आयाती, कुरान मजीद की आयात तिलावत कर करके उनके सामने बयान करते थे। हमारे सामने तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई मौलाना साहब, कोई पीर साहब, कोई जो है वो तबलीगी जमात वाला, कोई जो है वो इकामत दीन वाला, कोई भी इस तरह से जो है वो हमारा ये वाला सिस्टम ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, तो फिर ये जो दरस कुरान है, इस दरस कुरान के अंदर जो नकली दलाइल सामने पेश किए जा रहे हैं, ठीक है, कि अल्लाह ने ये फरमाया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है, और फलाने मशायख ने ऐसे बात समझाई है, ये नकली दलाइल कहलाते हैं, दे हैव बिन नरेटेड, दे हैव बिन कॉपीड फॉरवर्ड, ठीक है, इसको नकली दलाइल कहते हैं। और अकली दलाइल के ऊपर कितनी सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, कि जिस जो कि अकल को झंझोड़ दे, लेकिन हम तवज्जो से नहीं बात सुन रहे, हम जो है वो इधर डिस्ट्रैक्टेड हैं उधर डिस्ट्रैक्टेड हैं, या ये कि अगर कोई जरा सुन भी रहा है तो अब क्लास खत्म, उसके बाद ऐसा बंद हर चीज, अब जो है वो बैक टू योर रियल लाइफ, बैक टू रियल लाइफ, बैक टू रियलिटी, क्लास खत्म होने के बाद ये क्लास जो थी ये रियलिटी नहीं थी, इसका ताल्लुक हकीकत से नहीं है, इसका ताल्लुक हमारी जिंदगियों से नहीं है, ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। ठीक है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, तो तो अब आप जो है ना न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में एकेडमिक मालूमात हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं, या जो है वो ऑनलाइन कोई क्लास लेते हैं। तो अब वो 2 घंटे की क्लास होती है, उसमें आपने न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में जो है ना वो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो सुन लिए, ठीक है। अब जब आपने क्लास खत्म करी, तो अब जिंदगी के अंदर जो आपके घर के अंदर मामला चल रहे हैं, और जो है आपके पास पड़ोस के साथ जो आपके अहवाल चल रहे हैं, जो आपके इंटरेक्शंस हैं, जो आपकी सोच है, जो आपकी फिक्र है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेडिसिन तो गालिब नहीं होती ना, होती है किसी के, राइट। न्यूक्लियर मेडिसिन, ये एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी के कोई कोई जो है वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा है, कोई जो है वो पता नहीं कौन सी साइंस पढ़ रहा है, कोई कौन सी साइंस पढ़ रहा है, तो अब उसके जहन दिलो दिमाग के ऊपर वो क्लास का मटेरियल तो सवार नहीं होता ना, अनलेस के वो कोई नर्ड किस्म का इंसान हो। नर्ड कहते हैं वो जो बिल्कुल ही मोटा चश्मा लगा करके, और जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो अपनी किताबों के अंदर ही जिंदगी गुजार रहा होता है, उसको नर्ड कहते हैं उसको, ठीक है ना, किताबी कीड़ा हमारे यहाँ कहते हैं उसको। तो वो तो फिर 24 घंटे ही जो है ना वो किताबों के बारे में सोचता रहता है, वरना तो किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं होता ना, कि क्लास में बात जो हुई होती है वो फिर दिलो दिमाग के ऊपर छाई रहे, उसके ऊपर तो नहीं बाद में गौर कर रहे होते। तो ये जो हम नकली और अकली दलाइल, अल्लाह की तौहीद के बारे में, आखिरत के बारे में जो हम दरस कुरान के अंदर सुनते हैं, हम उसके साथ यही रवैया नहीं रखते कि जो कि हम किसी और टेक्नोलॉजी के क्लास के बारे में, या किसी और जो है वो साइंस के शोबे की क्लास के बारे में, या किसी और एकेडमिक क्लास के बारे में रखते हैं, कि इसका कोई असर जो है वो हमारी जिंदगी के ऊपर नहीं होता, हमारी सोच के ऊपर नहीं होता, हमारी फिक्र के ऊपर नहीं होता, हम सोच नहीं रहे होते कि हाँ यार हमने उस क्लास के अंदर ये सुना था कि हमारा परवरदिगार तो असल में हमसे ये चाहता है, और देखो मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूं, राइट। मुझे इस जिंदगी को तब्दील करना चाहिए ताकि मैं परवरदिगार के मुकर्रब बंदों में से बन सकूं, ना कि मैं उसके मग़दूब बंदों में से बना रहा हूं, जिसके ऊपर उसकी नाराजगी हुई, जिसके ऊपर उसका गजब हुआ, जो कि रास्ते से गुमराह हो गए, मैं तो वो वाले अमाल कर रहा हूं। तो लेट मी चेंज माई सेल्फ, लेट मी चेंज माई थिंकिंग एंड माई एक्शंस, राइट, एंड माई यूज ऑफ माई टंग, मैं अपनी जुबान को कैसे इस्तेमाल करता हूं, अपनी सोचों को किस तरफ मैं लेकर के जाता हूं। तो मैंने तो अल्लाह की रजा ये सुनी है दरस कुरान के अंदर। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर ये आयत जो है ये पूरी की पूरी इल्ला कानू अनहा मुअरिदीन, एराज करते हैं वो इससे, तो ये पूरी की पूरी हमारे ऊपर अप्लाई होती है ना फिर, क्योंकि हम भी इसी तरीके से सुन तो लेते हैं लेकिन सुनते नहीं है। कालू समेना वलाऊ, कहते हैं कि जी हम सुन रहे हैं लेकिन वो ना तस्मऊ वा अंतुम तस्मऊ, ठीक है, क्या है वो, कालू समिअना वहुम ला यस्मऊ, लेकिन वो सुनते नहीं है, ठीक है। तो क्या ये रवैया हम अपने अल्लाह के कुरान के साथ कर रहे हैं, तौबा कर लेनी चाहिए हमें इससे, तौबा कर लेंगे तो अल्लाह थोड़ा माफ कर देंगे, लेकिन हमें तो ये नहीं पता तौबा क्या किस चीज को कहते हैं, ठीक है। गाफिल, गफलत से नदामत और शर्मिंदगी को, और फिर आगे ना करने के ऐसे रवैये के इरादे को तौबा कहते हैं। अच्छा, चौथी आयत में ये हो गया, पांचवी आयत में इसी गफलत शियारे की मजीद तफसील बाज़ वाक़ियात की तरफ इशारा करके बयान फरमाई है कि फकत कज़बू बिल हक़ लम्मा जाअहुम, यानी जब हक उनके सामने आया तो उन्होंने हक को झुटला दिया। हक से मुराद कुरान भी हो सकता है यहां पर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक्दस भी, ठीक है, वो भी सच्ची थी और कुरान मजीद भी सच्चा है। अच्छा, जाते अक्दस और कुरान मजीद में फर्क क्या है, ठीक है, कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज, जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे जाती अल्फाज नहीं है बल्कि ये अल्लाह के अल्फाज हैं, ये कुरान बन गया, यही कुरान है। यानी ये भी कोई अलग से कोई चीज नहीं है कि ऊपर से कोई पर्चा जो है वो नीचे नीचे आ रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको ग्रैब कर लिया कि देखो ये कुरान है, राइट, कोई टैबलेट जो है वो ऊपर से आ रही थी, नहीं, कुरान भी नबी अलैहिस्सलाम की जात के थ्रू ही हम तक पहुंचा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने ही बताया है कि ये जो मैं कह रहा हूं ये कुरान है, ठीक है ना, इसको तस्लीम कर लेना, ठीक है। यही सहाबा ने किया और वो मुसलमान और सहाबी बन गए। जो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि ये कुरान है, और दूसरी चीजों को फरमाया नहीं ये कुरान नहीं है, सहाबा ने मान लिया कि हाँ ये कुरान नहीं है। और क्या फर्क है कुरान में और नबी अलैहिस्सलाम की दूसरी बातों में, और क्या फर्क है, कोई और फर्क नहीं, यही फर्क है, ठीक है। बाकी जो एजाज और आदाब और ये सारी चीजें, तो फिर जब पता चल गया, मान लिया कि हाँ ये कुरान है, अब उसके अंदर गौर व फिक्र करना शुरू किया, तो लोगों ने फिर उसके अंदर आ ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का ये है, ये कुरान का वो है, ये सब तो बाद की बात है। शुरू में कोई थोड़ी पहले टेस्ट किया था कि हाँ भाई ये वाले जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये कुरान है, क्या ये साइंटिफिक मिरेकल्स के ऊपर फिट होता है कि नहीं होता, साइंटिफिक रियलिटीज के मुताबिक है तो हम मानेंगे कि हाँ ये कुरान है, वरना हम इसको नहीं मानेंगे कुरान है। क्या ऐसा किया था सहाबे कराम ने, या ये कि क्या ये अरबी जुबान के फलाने फलाने उसूलों पर अप्लाई पर फिट आता है तब हम मानेंगे ये कुरान है, और जो फिट नहीं आता अरबी जुबान के फलाने फलाने उसूलों के ऊपर तो हम उसको नहीं मानेंगे ये कुरान नहीं है। यानी स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग एज कुरान वॉज वॉट, साइंस या अरबी जुबान के एजाज, अरबी जुबान के उसूल और कवायद, ये था स्टैंडर्ड सहाबा कराम के सामने? नहीं, नबी अलैहिस्सलाम का फरमा देना कि ये कुरान है, बस दैट वाज द ओनली स्टैंडर्ड, दैट वाज द ओनली क्राइटेरिया जिसकी बुनियाद पर कोई चीज कुरान बनी, ठीक है। और बाकी उसके अलावा जो कुछ है वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस कह दी जाती है, उस कह दिया जाता है। तो अब ये इतनी बड़ी बात, ठीक है, एक ज़ात एक शख्सियत के बारे में इतनी बड़ी बात, तो आगे फरमाते हैं कि क्योंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदाए उमर से आखिर तक इन्हीं कबाइल अरब के दरमियान रहे, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा उन्हीं की आंखों के सामने आया, उनको ये भी पूरी तरह से वाज़े था, ठीक है, ये बात तो हम बाद में करेंगे, पहले इस एक जुमले को जरा डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, कि ये जो फरमाया ना कि नबी अलैहिस्सलाम इनकी निगाहों के सामने रहे, ठीक है, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इस बात को जिक्र करते हैं कि आप इनसे कह दीजिए कुल लव शा अल्लाहु मा तलाउतुहु अलैकुम, कि अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता ना तो मैं इस कुरान को तुम्हारे सामने तिलावत नहीं कर सकता था, ठीक है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से अपने आप को जो है ना वो लोगों के सामने प्रेजेंट किया कि देखो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना ये मैं अपनी सलाहियतों की और अपनी अकल की और अपनी खानदानी जो मेरे अंदर जेनेटिकल जेनेटिकल ताकतें आई हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से, राइट, मैं उनकी बुनियाद पे सारी चीजें नहीं कर रहा कि मेरी अपनी कोई जाती खानदानी कस्म की ये सारी सलाहियतें हैं जिसकी बुनियाद पर कर रहा हूं, नहीं, आई एम नथिंग, मैं तो ये अल्लाह की तरफ से कर रहा हूं बस, और ये इसका पूरा का पूरा क्रेडिट, इसका पूरा का पूरा जो जो अजमत है वो सारी की सारी अल्लाह की है। ये अपनी नफी कर रहे हैं बिल्कुल, लव शा अल्लाह मा तलउतुहु अलैकुम, अगर अल्लाह नहीं चाहता ना मैं तो अपनी मर्जी से इसकी तिलावत भी तुम्हारे सामने नहीं कर सकता, वला अदराकुम बिही, ठीक है, और ना जो है ना तुम इसको समझ सकते थे, ना तुम इसका इदराक कर सकते थे, और ना बल्कि ना अल्लाह तुम्हें इससे वाकिफ कराता, वो तुम्हें इसका इदराक करवाता, ठीक है ना, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो वो तुम्हें इसका इदराक भी नहीं करवाता, यानी इसको तुम्हें बताता भी नहीं, समझाता भी नहीं, ठीक है। फिर आगे फरमाया फकत लबिस्तु फीकुम उमरम मिन कबली, के तहकीक के इससे पहले भी मैं तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजार चुका हूं, यानी मैं तुम्हारे दरमियान ही रहा हूं, मैं कोई ऊपर से टपकी हुई मखलूक नहीं हूं, मैं कोई बाहर से जो है ना वो आया हुआ कोई फर्द नहीं हूं तुम्हारे दरमियान, ठीक है, लकद लबिस्तु फीकुम उमर मिन कबलिही, ठीक है, अफला ताकिलून, क्या तुम अल्लाह की दी हुई ये जो अकल है तुम्हारे सरों के अंदर, तुम उस अकल को इस्तेमाल नहीं करते इन कामों के अंदर? वैसे तो बड़ा इस्तेमाल करते हो, राइट? अपनी बागबानी के अंदर बड़ा इस्तेमाल करते हो, अपनी जो है वो सनअत व तिजारत के अंदर बड़ा इस्तेमाल करते हो, अपने जो है वो जंगों के लिए बड़ा इस्तेमाल करते हो। अकल ही को इस्तेमाल कर रहे हो ना, जिसकी बुनियाद पर तुम जो है वो ये सारे काम करते हो। लेकिन इस मामले में तुम्हारी अकल जो है वो घास चरने के लिए चली जाती है, यहाँ पे तुम्हारी अकल जो है वो इस्तेमाल क्यों नहीं होती? ठीक है कि भाई मैं तुम्हारे सामने रहा हूं ना, तो ये जो मामला है ना कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को इनकी निगाहों के सामने रखा, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से वाकिफ थे। अच्छा, ये तो थे मक्का मुकरमा के लोग। दूसरी जो नस्ल थी जिससे कि नबी अलैहिस्सलाम को वास्ता पड़ा, वो थे यहूद और नसारा। ठीक है, इनका मामला क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनके दरमियान तो आप सॉरी अल्लाह ताला ने इनके दरमियान तो नबी अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं किया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहते अपने सामने पलता बढ़ता और जो है वो उनके अखलाक को देखते, ये ऐसा तो नहीं किया यहूद नसारा के साथ। लेकिन इनकी किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की इतनी सारी डिटेल्स जो है वो लिख दी कि ऐसा के गोया के वर्चुअली नबी अलैहिस्सलाम इनके दरमियान मौजूद है, मक्का मुकरमा वालों के फिजिकली नबी अलैहिस्सलाम सामने मौजूद रहे और इन लोगों के थ्योरेटिकली नबी अलैहिस्सलाम सामने मौजूद रहे। इसको आज की जुबान में वर्चुअली कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा वाकफियत नबी अलैहिस्सलाम के साथ क्यों फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? वरना वरना क्या होता है आजकल, खुसूसन हम बड़े इस बात से वाकिफ हैं ये कोई जी मौलाना साहब आ रहे हैं, फलाने शहर से आ रहे हैं, वो आकर के जो है ना वो एक बयान करके चले जाएंगे फिर। ठीक है ना, कुछ तो बल्कि इलाकों के बारे में दोस्तों ने बताया कि वो मौलाना मौलाना साहब को बुलाते हैं, सुनते हैं और आगे चलता करते हैं, फिर अगले मौलाना साहब को बुलाते हैं, सुनते हैं और आगे चलता करते हैं। नाम लेना मुनासिब है उस जगह का जिसके बारे में मुझे लोगों ने बताया है, ऐसी वाली बात। ठीक है, तो ये ना मौलवियों को बुला बुला करके बयान करवा करवा करके आगे चलें भैया, अब आप चलें, अब दूसरे को बुला रहे हैं हम, अब आपको सुनेंगे, अब आप चलें आगे, अब हम अगले को बुला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना जो जो बाहर से मौलाना साहब आते हैं नसीहत की बातें करते हैं, तो अब उन मौलाना साहब को तो कोई ज्यादा नहीं जानता, कभी थोड़ी उनकी शोहरत सुनी हुई होती है, थोड़ी सी उनकी बातें सुनी हुई होती हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी को, उनके घर के हालात को, उनका बीवी के साथ कैसा मामला है, उनकी औलाद के साथ उनका कैसा मामला है, उनके पास पड़ोस के साथ उनका कैसा मामला है, उनकी आदात कैसी हैं, उनके अखलाक कैसे हैं, ये कुछ भी नहीं पता होता किसी को। बस एक वन डायमेंशनल पिक्चर होती है उनके सामने जो उन्होंने टीवी पे देखी होती है। पहले जमाने में टीवी नहीं होती थी, ये हमारा फोन क्या है, टीवी है ना, आजकल की टीवी जो है फोन है, यूट्यूब। ठीक है, तो वो टीवी के ऊपर जो है उनको देखा हुआ होता है, या उनको जो है वो रिकॉर्डिंग उनकी सुनी हुई होती है, उससे ज्यादा कुछ पता नहीं होता। ठीक है, तो ये भी दीन की दावत का एक तरीका है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे होते, ये तो ये लोग गलत काम कर रहे होते हैं ना कि चलता करते हैं, इधर से बुलाया आगे चलता गया, इधर से बुलाया आगे चलता गया, ये तो ये लोग गलत काम कर रहे होते हैं बुलाने वाले। लेकिन मौलाना साहब जो सारी दुनिया में सफर कर रहे होते हैं, तो वो तो सही काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे हजरत एक जगह टिक के नहीं बैठते, आज भी जो है वो इतनी उम्र हो गई, इतनी बीमारियां लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी जो है ना वो सफर ही सफर। तो ये कोई गलत काम तो नहीं किया उन्होंने, हम ये नहीं कह रहे कि नाउजुल्ला वो गलत काम करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो एक दावत का अंदाज होता है। ठीक है, जिसके अंदर के एक प्रिटी मच अननोन पर्सन आकर के दावत दे रहा होता है, बातें बता रहा होता है, और एक दावत का अंदाज ये है कि जिसके अंदर आप उस बंदे को, उस शख्स को और उसके पूरे खानदान को जो है वो इनसाइड आउट जानते हैं, और फिर वो आपके सामने जो है ना वो कोई बात रखता है। क्या फर्क है इन दोनों चीजों के अंदर, आपसे भी अगर हम पूछें इन दोनों दावतों में क्या फर्क है, क्यों जो है वो वाली दावत का तरीका इख्तियार किया जाता है और क्यों जो है वो ये वाली दावत का तरीका इख्तियार किया जाता है, ये जिसके अंदर इनसाइड आउट आप वाकिफ होते हैं उस बंदे से, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, क्या मतलब हिकमत क्या है इन दोनों के अंदर, कि जब वो वाला तरीका एप्लीकेबल होता है और ये वाला तरीका एप्लीकेबल होता है, कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो वाला तरीका इफेक्टिव होता है और किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वाला तरीका इफेक्टिव होता है। उम्मीद है कि मैं सवाल को सही पुट कर पाया हूं। यकीन होता है कि सच्ची बात करेगा। मैं सवाल तो मेरा सब पहले समझे ना कि सवाल क्या किया जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में, ये कॉन्टेक्स्ट हम आपसे पूछ रहे हैं। बंदे की क्रेडिबिलिटी होती है जिसकी वजह से समझ में, क्या समझाने में कंपैटिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे लिखा ख्वातीन में के वाकिफ होने की वजह से आप कस्टमाइज्ड करके दावत दे सकते हैं। इसको पहले क्या बताना समझना चाहिए। वी बिलीव द पर्सन वी नो इजिली एंड इट्स हार्ड टू ट्रस्ट एंड बिलीव द वन वी डोंट नो पर्सनली वेल एनफ। एक तरीका दीन की तरफ बुलाना, दूसरा तरीका आने वालों की शख्सी इस्लाह। अच्छा, ये जो जवाब है ये थोड़ा सा ज्यादा सेंसिबल लग रहा है कि एक तरीका जो है ना वो ओवरऑल दीन की तरफ बुलाना और दूसरा तरीका जो है वो उनकी शख्सी इस्लाह। मतलब ठीक है, एक अच्छा आपने जवाब दिया है लेकिन ये इतना सेटिस्फाइंग किस्म का जवाब फिर भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, और जवाब यह है कि एक तरीका दावत दावत आम होता है और दूसरा इनफरादी। आपने वही वाला जवाब दिया है, आपसे पहले वाली बहन ने दिया था। मिजाज का फर्क होता है, मिजाज का फर्क कि वो डिफरेंट मिजाज के लोगों को दावत दी जाती है उस तरीके से, और इस तरीके से जो है वो डिफरेंट मिजाज के लोगों को दावत दी जाती है। पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। अच्छा, मर्दों में फिर बहुत सारे जवाब आए, उनको भी पढ़ लेते हैं के टू इस्टैब्लिश अथॉरिटी एंड प्रिवेंट एक्सक्यूजेस। इस्टैब्लिश अथॉरिटी एंड प्रिवेंट एक्सक्यूजेस। अच्छा, उमूमी दावत और खसूसी दावत, ये तो वही लोग खवातीन की तरफ से जवाब आ रहा है। डिटेल्ड स्पेशलाइज तरबियत इज ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रेडिबल पर्सनैलिटी। ठीक है, ये बात वही है वो पर्सनलाइज और जनरलाइज वाली। तो डिटेल्ड स्पेशलाइज तरबियत जो होती है वो बहुत ही क्रेडिबल पर्सनैलिटी यानी समवन यू नो इनसाइड आउट, बहुत अच्छी तरीके से जिसको आप जानते हैं, तो उसी के सामने जो है ना वो आप अपने आप को कंप्लीटली खोलते हैं। जिसको आप सुपरफिशियली जानते हैं, थोड़ी देर के लिए जानते हैं, तो उससे आप अच्छी चीजें सुन तो लेते हैं लेकिन अब आप उसके सामने अपने आप को खोल नहीं पाते, है ना, अपनी ज़ाती इस्लाह के लिए। तो ये बात तो माशाल्लाह काफी लोगों की ये वाली जवाब दे रहे हैं। अच्छा, और किसी ने लिखा वन फॉर तस्किया विच नीड्स पर्सनलाइज्ड, वन फॉर तस्किया विच नीड्स पर्सनलाइज गाइडेंस। अच्छा, सभी माशाल्लाह ये जवाब दे रहे हैं, मतलब अक्सर लोग ये जवाब दे रहे हैं। पहले वाला अंदाज में करने का मकसद इब्तदाई दावत और मोटिवेशन है, उमूमी दीनी अहकाम और मसाइल का तस्करा करना। दूसरा तरीका उसके बाद का मरहला यानी जब वो इस्लाह पर राजी हो जाए। ये भी वही जवाब है, जो लोग वैद की रूह से वाकिफ नहीं है और उनका कोई शेख नहीं है तो वो तरीका बेहतर है लेकिन नेक्स्ट लेवल। ये भी वही जवाब है। ठीक है, तो ये जवाब बड़ा यानी मकबूल जवाब है आप लोगों में कि एक जनरलाइज दावत का तरीका है जो कि सफर कर करके मुख्तलिफ जगहों पर जाना, और दूसरा जो है ना वो बड़ा पर्सनलाइज दावत का तरीका है। ठीक है, आई डोंट क्वाइट एग्री विद दैट। सही है, क्योंकि ये जो जनरलाइज और पर्सनलाइज वाला मामला है ना, तो ये भी जो है ना ये भी होता है उस तरीके में, सफर के तरीके में। ठीक है, क्योंकि सफर एक दफा करने में तो इतना आप बंदे को नहीं जानते हैं लेकिन जब कोई अक्सर सफर करता रहता है तो फिर आप उसको जान जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बैत का ताल्लुक भी हो जाता है। और जैसे कि हमारे हजरत पूरी दुनिया में सफर करते हैं, तो अब हजरत के खाली ये नहीं है कि बस लोग जो है वो सुन करके फिर उनको आगे चलता कर देते हैं, जैसे मौलाना तारे जमीन जैसे स्पीकर्स हैं तो वो सारी दुनिया में सफर करते हैं लेकिन हमने ज्यादा नहीं सुना कि उनके साथ कोई बाकायदा इस्लाही ताल्लुक होता है और बैत का ताल्लुक होता है, वो बस बयान करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस किस्म का उनका काम है, तो ये एक ही बंदा जो है ना वो दोनों काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो फर्क है ना इन दोनों के अंदर, ठीक है, इस पे जरा आप गौर करें। नबी अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाना और बहुत सारे दूसरे अंबिया का दूसरा दुनिया में तशरीफ लाना, ठीक है, बनी इसराइल के 10,000 से ज्यादा अंबिया उनका दुनिया में तशरीफ लाना, ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क था। ठीक है ना, ये फर्क देखें अगर आप, ठीक है, बनी इसराइल के मोर देन 10,000 थाउजेंड अंबिया। उनका दुनिया में तशरीफ लाने का और काम करने का तरीका जो था वो एक डिफरेंट था, और नबी अलैहिस्सलाम को जो था ना वो कॉन्टेक्स्ट एक डिफरेंट था। वो क्या कॉन्टेक्स्ट था, यानी तरीका तो तरीका डिफरेंट नहीं, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। ठीक है, वो ये है कि जो इस तरह से आते हैं ना कि जिसके अंदर जो है वो आप बहुत ज्यादा उस बंदे को नहीं जानते, ठीक है, लेकिन उसका जो बयान होता है, उसका जो उसकी जो दावत होती है ना, उसकी दावत से जो है ना वो आप अच्छी तरीके से पहले से वाकिफ होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी वही वाली दावत देने वाले दूसरे लोग आपके पास थोड़े ही अरसा पहले आ चुके हैं, ठीक है ना, जिनको कि आपने सुना, उनको माना, और उनकी जो है ना वो आपने चीजों को वेरीफाई कर लिया, और जो है वो आप उससे वाकिफ हो गए। अब जो बाकी लोग आ रहे हैं ना, वो उन प्री एस्टैब्लिश्ड आइडियाज को रीइन्फोर्स करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कोई नया मैसेज लेकर के नहीं आ रहे आपके पास जिससे कि आप बिल्कुल ही नावाकिफ हो चुके हैं, ठीक है ना, है तो वो असल में पुराना ही मैसेज, ठीक है, लेकिन उसकी रीइन्फोर्समेंट, उसको बार बार आप तक पहुंचाने वाले लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना जब मामलात होते हैं, ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है कि जिसके अंदर पीपल आर ऑलरेडी वेरी फेमिलियर विद द मैसेज, तो अब जो है ना जब वो गुमराही के रास्ते पे निकलते हैं तो रीइन्फोर्समेंट के लिए जो है वो कौन आ जाते हैं, एक और नबी साहब आ जाते थे, ठीक है ना, या आजकल कहा जाएगा कि एक और शेख साहब आ जाएंगे, एक और मौलाना साहब आ जाएंगे, ठीक है ना, और वो आपको रिमाइंडर्स देंगे, रिमाइंडर्स देंगे, रिमाइंडर्स देंगे, ठीक है ना, तो रिमाइंडर्स जो है वो जो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो उसका फायदा हो जाएगा, और जो रिमाइंडर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका नुकसान हो जाएगा, वो इनकार करने वालों में शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए ना, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने भी आकर के बिल्कुल कोई नई चीज नहीं बताई थी, वो भी एक पुरानी चीज थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम और जो पिछले नबी थे यानी ईसा अलैहिस्सलाम, उनके दरमियान एक बहुत लंबा गैप आ चुका था, 500 साल कम अज कम, ठीक है ना, बहुत लंबा गैप आ चुका था, और दुनिया जो है ना वो ओवरऑल जो है वो गुमराही का शिकार हो चुकी थी, नजरियात लोगों के खराब हो चुके थे, ठीक है ना, हकीकत बहुत छुपी छुपी मौजूद थी, और लेकिन उसको जो है वो उलमा लेवल के जैसे जैसे यहूद और नसारा के उलमा थे सिर्फ वो जानते थे, या बहुत ही पढ़े लिखे लीडर किस्म के लोग वो जानते थे, बाकी आवाम जो है ना वो बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी, और गुमराही की इंतहा को जो है वो इंसानियत पहुंच चुकी थी, ठीक है ना, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाते हैं अपने कुरान मजीद में, लम यकुन लदीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना मुनफक्कीना हत्ता तातियहुमुल बय्यना, हत्ता के यानी ये लोग हरगिज ईमान नहीं लाने वाले थे, अहले किताब भी और मुशरिकीन भी, ठीक है ना, हत्ता के इनके सामने बय्यना आ जाए, बय्यना खुली दलील आ जाए, ठीक है ना, तो हालात जब इतने खराब हो जाए ना तो उस वक्त जो है ना फिर कोई पर्सनालिटी जब आएगी, और उस वक्त गोया के बिल्कुल जो है ना वो गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म लोगों को ले जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उस वक्त जो नॉर्म बन चुकी है, लोगों का मिजाज बन चुका है, लोगों की फिक्र बन चुकी है, वो बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में बन चुकी है, अब उसको रिवर्स करना, रिवर्सिंग द टाइड, वो कोई री इन्फोर्सर आकर के नहीं कर सकता, सिर्फ री इन्फोर्सर लेवल का बंदा है ना जो कि रिमाइंडर्स दे रहा हो वो ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए तो बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी की जरूरत है, बहुत ज्यादा जो है वो उसके लिए यानी लोगों की यानी लोगों की वाकिफियत की जरूरत है उस पर्सनालिटी के साथ, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ऐसे मौके के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे नाजिल किया इन लोगों के दरमियान कि मक्का मुकरमा वालों को तो फिजिकली नबी अलैहिस्सलाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, शुरू से लेकर के पैदाइश से पहले से, बल्कि आम उल फील से जो है वो इंट्रोडक्शन शुरू हो गई कि एक बहुत बड़ा वाकया होना होने वाला है, राइट। अब ये हाथियों को हमारे एक दोस्त हैं वो जरा अपनी साइंस रिसर्च के अंदर लगे रहते हैं, है ना, कुरान हदीस के अंदर और इस तरह के ना, वो एक अलग किस्म की रिसर्च में लगे रहते हैं। कुछ बातें उनकी तो हम भी एग्री नहीं करते उनसे, लेकिन कुछ बातें जो है बड़ी मजे की होती हैं उनकी, ठीक है। तो उससे डिसएग्री करना भी जरा मुश्किल होता है। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात जो है ना वो कही कि ये जो हाथियों का लश्कर लेकर के आया था ना ये, ठीक है ना, ये हाथियों का लश्कर जो है ना ये काबतुल्ला को खाली गिराने के लिए नहीं लेकर के आया था, ठीक है। उसने बहाना यही बनाया और उसने धमकी यही दी कि मैं काबतुल्ला को गिरा दूंगा, लेकिन दिस वॉज नॉट हिज ओनली गोल, दिस वॉज नॉट हिज ओनली गोल। काबतुल्ला को गिराने के लिए हाथियों की जरूरत नहीं थी, वो तो इंसान भी धक्के दे दे करके गिरा सकते हैं उस जमाने का। आज का काबतुल्ला तो चलो ज्यादा मजबूत है ना, उस जमाने में तो वो लकड़ी पत्थर और इस किस्म के तरीके से काबतुल्ला बनाते थे, राइट। उसमें कितनी ताकत होती थी, वो तो ऊंटों से भी गिर सकता है, वो तो घोड़ों से भी गिर सकता है, वो तो रस्सियां बांध करके जो है वो चंद इंसान खींच लें तो वो भी उस तरह से भी काबतुल्ला गिर सकता है। तो ये 12 हाथियों को लेकर के आने की क्या जरूरत थी, जिसके लिए जो है ना वो बाकायदा अफ्रीका से वो इम्पोर्ट किए गए थे यमन में, पर यमन से जो है वो इतना लंबा सफर करके यहाँ पर आए थे। और दूसरी बात यह है कि काबतुल्ला की इमारत गिरना कोई नई बात तो नहीं है, ये तो कई दफा गिर चुकी है, ठीक है। यानी आदम अलैहि सलाम ने बनाया, गिर गया, इब्राहिम अलैहि सलाम ने आकर के बनाया, उसके बाद से जो है वो 5 दफा तो वो गिर चुका है काबतुल्ला, और फिर वो रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है। और तीसरी बात यह है कि काबतुल्ला की इमारत जो है वो तो बरकत के हिसाब से तो चलो उसका जो है ना वो लकड़ी मिल जाए किसी को, किसी को उसका पत्थर मिल जाए तो बड़े बरकत वाला पत्थर होता है, बड़ा जो गिलाफे काबा की बड़ी बरकत होती है, लेकिन असल जो सिग्निफिकेंस है वो इमारत की तो नहीं है, राइट। असल सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस जो है वो तो उस लोकेशन की है, ठीक है ना। तो इस वजह से जब आप जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो क्या आप काबतुल्ला की इमारत की तरफ रुख करके जो है वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, या आप अगर जो है वो अंडर वाटर डाइविंग कर रहे होते हैं तो आप जो नमाज पढ़ेंगे समंदर के अंदर सबमरीन में बैठ करके नमाज पढ़ेंगे तो आप काबतुल्ला की इमारत की तरफ तो नहीं डायरेक्शन कर रहे होते, किधर डायरेक्शन कर रहे होते हैं उस, यानी उस वो एक पिलर है ना अल्लाह ताला की खसूसी तजल्लियात का जो कि ऊपर से लेकर के जेर जमीन तक जाता है, तो आप उसकी डायरेक्शन में जो है वो नमाज पढ़ते हैं ना, तो इमारत की सिग्निफिकेंस तो वैसे भी इतनी नहीं है, ठीक है। तो फिर इमारत के लिए वो जो है वो हाथी लेकर के आएगा और इमारत के लिए जो है वो इतना बड़ा जो है तमाशा करेगा, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ हिज गोल्स के काबतुल्ला पे कोई को भी गिरा दे, क्योंकि वहां पे जो है वो अरबों ने जो है वहां पे गंदगी कर दी थी उसके कैथीड्रल के अंदर, तो वो बदला भी निकालना चाहता था। लेकिन असल में जो है ना वो लेकर के आया था हाथियों को कि इस ये जो पहाड़ी इलाका है ना कि काबतुल्ला देखे चारों तरफ पहाड़, अब तो वो पहाड़ जो है वो जमजम टावर और मक्का टावर और इनकी शक्ल इख्तियार कर गए, लेकिन पहले तो वो खास पहाड़ी होते थे, तो हाथियों की चिंघाड़ से वो दरअसल बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन, ठीक है ना, उस हदीस के मुताबिक जिसे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनको ईमान अता फरमा दिया था दोबारा जिंदा करके नबी अलैहिस्सलाम की दुआ पर, वालिद मोहतरम और वालिदा दोनों को जो है वो ईमान अता फरमाया था, फिर उनको दोबारा से मौत अता फरमाई थी। एक हदीस ये भी है, तो इस हदीस की बुनियाद पर उनको बीबी आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा कहेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल तो उनका जो है वो हमल गिराने के लिए के जो हाथियों की चिंघाड़ होती है ना वो जो एको करेगी इस वादी के अंदर, तो इस वॉइस के अंदर इतनी ताकत होती है कि इसके जरिए से जो है ना वो बाकायदा चीजें फट जाती हैं। ये सूर की भी यही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि जो सूर फूकेंगे तो वो एक आवाज होगी, उस आवाज की फ्रीक्वेंसी जो है वो हर हर चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करती जाएगी, जैसे जैसे मैच करेगी रेजोनेंस इफेक्ट विल टेक प्लेस एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट एक्सप्लोडिंग, हर चीज एक्सप्लोड होना शुरू हो जाएगी। तो आवाज के अंदर इतनी ताकत है, ठीक है ना। और ये आजकल जो है ना उसको इस्तेमाल भी करते हैं लोग, यानी आवाज की ताकत को। तो ये जो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी ना ये इतना यानी अजीम तरीन वाकया था, क्योंकि इस पैदाइश के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पूरी की पूरी इंसानियत जो है गुमराही के रास्ते के ऊपर चल पड़ी थी, इसके जरिए से अल्लाह ताला ने उसको रीसेट करना था, उसको री इस्टैब्लिश करना था, उसकी तजदीद कर देनी थी। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना वो सिर्फ एक रिमाइंडर करने वाला बंदा, जैसे कि बनी इसराइल के अंबिया होते थे, वो अपने से पिछले वाले नबी की मैसेज को जो है वो रिमाइंड करवा रहे होते थे लोगों को। ठीक है ना, हर नबी जो है वो पिछले नबी की बात को रिमाइंड करवा रहा होता था। नबी अलैहिस्सलाम का मामला जो है वो इससे बड़ी हद तक डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट नहीं था लेकिन बड़ी हद तक डिफरेंट था। तो ये जो है ना आज के दौर में भी तकरीबन बिल्कुल वैसा तो नहीं है मामला, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम अपना काम करके जा चुके, अल्लाह ताला ने अपने दीन को स्टैब्लिश कर दिया और उसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी ले ली। लेकिन फितना-ए-दज्जाल जो है जिससे कि हम गुजर रहे हैं इस वक्त, ये इतना बड़ा फितना है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया है। राइट, कोई लल्लू पंजू किस्म का तो फितना नहीं हो रहा होगा ना, क्या मजाक समझ रहे हैं, समझ रहे हैं हम इस फितने को ना। फितने दज्जाल ना जी, कोई मसला नहीं, बड़े बड़े हमने फितने देखे हैं, एक और देख लेंगे, कोई बात नहीं है। अल्लाह के अंबिया ने, नबी अलैहिस्सलाम ने सारी बातें हमें बताई है ना। राइट, हम नहीं तवज्जो करते इन बातों के ऊपर, हम समझते हैं कि ऐसी बस टाइम पास किस्म की चीजें हैं। हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है, तो किसी मामूली चीज से हर नबी अपनी उम्मत को डराएगा? ठीक है, दुनिया में वाकई होने वाला फितना, कयामत से तो डराया हर नबी ने, लेकिन कयामत तो भाई एक अलग किस्म की चीज है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके अंदर। ये फितने दज्जाल तो दुनिया में वाकई होने वाला एक फितना है। ठीक है, तो इस जमाने में भी ऐसा मामला हो गया है कि पूरी दुनिया की जो सोच है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की इस्टैब्लिश की हुई सोच के तकरीबन बिल्कुल रिवर्स हो गई है। हर एक ने जो है वो एक अंदाज से सोचना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि जो ये जो बातिल तहजीब है, दज्जाली तहजीब है, इसकी सारी की सारी जो है ना वो इस वक्त मेहनत यही चल रही है कि वो अपने टेक्नोलॉजी, मीडिया, एजुकेशन सिस्टम, इन सब के जरिए से लोगों की सोच को जो है ना वो अपने रुख पे चला रहे, लोगों की सोच को अपने रुख पे चला रहे, जिस रुख पे वो सोचना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी दुनिया सोचे, वो उसी रुख पे। इसी वजह से ये जितनी हम समझते हैं कि सिर्फ ये हथियारों से मारते हैं ना मुसलमानों को, नहीं, हथियारों से मारना तो अब इन्होंने छोड़ भी दिया है काफी हद तक, अब ये मीडिया के जरिए से मारते हैं। तो इस वजह से इनके जो बड़े बड़े प्लानर्स हैं ना, उनके अंदर ये CNN, ये NBC, ये फॉक्स न्यूज, ये जितने मीडिया आउटलेट्स हैं, चाहे आपके पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, वो भी सारे इन्हीं के हैं, वो भी सारे के सारे इन्हीं के हैं। इनसे आजाद कोई भी मीडिया आउटलेट नहीं रह सकता। ये सब क्या है? जहन साजी करने वाले, सोच के रुख को बदलने वाले, ये है सारे के सारे मीडिया। और वही एजुकेशन सिस्टम जो कि छोटे लेवल के ऊपर बच्चों के लेवल से ये काम शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस वक्त भी यही मामला हो गया है कि बिल्कुल यानी नबी अलैहिस्सलाम के लाए हुआ दीन जो है ना वो बिल्कुल खिलाफ है इस वाली सोच के, जो कि इस बातिल तहजीब ने जो है दुनिया के अंदर राइज कर दिया है। अब जो है ना इस वक्त भी तकरीबन वही मामला हो गया है कि ये जो मेयर रिमाइंडर्स है ना, सम थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो, उसको री इन्फोर्स कर दो, उसको रिमाइंड करा दो लोगों को, याद दिहानी करा दो लोगों को, नो दैट इज नॉट इनफ, अब ये काफी नहीं है, क्योंकि लोग बिल्कुल खिलाफ सोचना शुरू हो गए उन सब चीजों। दुनियादार तो दुनियादार, इवन बहुत सारे दीनदार भी बिल्कुल खिलाफ सोचना शुरू हो गए। राइट, खुसूसन मकसद जिंदगी क्या है, मर्द का जो है वो अल्लाह ताला ने क्या रोल बनाया है, औरत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या रोल बनाया है, देख ले अपने चारों तरफ। दीनदार भी आपको एक से एक बढ़ करके नजर आएंगे जो कि औरत का रोल बिल्कुल वही तस्लीम करते हैं जो कि बातिल तहजीब जो है वो उसको प्रेजेंट करती है। जैसे बड़े नमाजी होंगे, बड़े परहेजगार बनते होंगे, बड़े जो है वो इबादतें और हज उमरे करने वाले होंगे, बड़ा जो है वो दीन का इल्म पढ़ा हुआ होगा, झकमारी भी होगी असल में दीन की किताबों के साथ, लेकिन औरत का रोल क्या होना चाहिए वो वही तस्लीम करते होंगे जो कि बातिल तहजीब ने प्रेजेंट करी हुई है इस दुनिया के अंदर। आप किसी के सामने इस तरह की बातें रखें कि नहीं ये रोल नहीं है, देखो कुरान के अंदर ये दलील मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में ये दलील मौजूद है, हमारे मशाइख की सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसके खिलाफ है, सारी दलीलें आप पेश कर दें उनके सामने, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे वो इस बात को। वो वही बात मानेंगे जो कि बातिल तहजीब ने उनके सामने रखी हुई है, जो कि मीडिया ने और एजुकेशन सिस्टम ने उनके सामने रखी हुई है। ठीक है, इस दौर के अंदर हमें इसी लेवल की, उसी तरह की जो है वो दावत की जरूरत है कि जो दाई है उसको लोग अच्छी तरह से जानते हों, उसकी जात को अच्छी तरीके से जानते हों, उसके खानदान को अच्छी तरीके से जानते हों, राइट, उसके घरेलू हालात को अच्छी तरीके से जानते हों, उसकी सदाकत, दयानत, शराफत, उसकी पाकीजगी, उसकी तहारत, उसकी सच्चाई, इनसे वाकिफ हों लोग, तो ये जो लेवल ऑफ ट्रस्ट होगा ना, अब इसकी बुनियाद पर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो विल बी पॉसिबल। समझ रहे हैं? गोइंग अगेंस्ट द फ्लो विल बी पॉसिबल, पॉसिबल अदरवाइज नो। अदरवाइज इतना जो है वो यू टर्न लेना पूरे जमाने के खिलाफ, आप जो है वो अपनी सोच को मुख्तलिफ करके जो है वो दूसरी तरीके से सोचना शुरू कर दें, ये मुमकिन नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम। क्या समझ में आया? माशाल्लाह 104 प्लस मर्दों में कितने हैं? बात समझ में आई? कोई सवाल? 32 बत्तीस, सॉरी 104। सर काउंटिंग से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कोई सवाल, कोई एतराज, कोई काउंटर एग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर? क्या ऐसा नहीं है दीन गालिब आ गया है? जैसे कि माशाल्लाह कल जो है वो किसी ने हमें वीडियो भेजी, लेस्टर, लेस्टर सिटी यूके, ठीक है, तो वहां पर जो है ना वो सिटी सेंटर के अंदर स्ट्रीट की वो वीडियो थी, लंबा दस्तरखान बिछा हुआ है, ठीक है, और उसके कोने के ऊपर जो है ना वो एक क्लीन शेव्ड, खैर शेविंग से दाढ़ी वाड़ी से भी खैर आजकल क्या, बहरहाल वो क्लीन क्लीन शेव्ड साहब खड़े हुए हैं स्टेज के ऊपर और ऐसी खूबसूरत अजान दे रहे हैं, और उस अजान के ऊपर जो है वो उस दस्तरखान, लेस्टर यूनाइटेड किंगडम के सिटी सेंटर की सड़क के ऊपर, दस्तरखान के ऊपर सब बैठ करके, बहन भाई सारे बहन भाई, सारे अजीबो गरीब किस्म के हों या शरीयत के शक्लो सूरत भी बनाई हुई अच्छी हो या जो है वो बिल्कुल ही फारिग हों, सब बैठ के इफ्तार कर रहे हैं। इस्लाम तो गालिब आ गया है ना भाई, अब तो यूके में जो है वो लगता है बस कल को जो है ना यूके का प्रेसिडेंट या यूके का प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो मुसलमान बनने वाला लगता है कोई। हिंदू ऐसी खामखेई खुश हो गए थे कि उनका प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो कोई आरएसएस का बंदा आ गया था, अब तो लगता है अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वहां का भी कोई दीनदार मुसलमान ही होगा। है फितने दज्जाल किधर गया? कहीं भूली बसरी चीज हो गई राइट, फितने दज्जाल जो है ना नाउज बिल्ला कहीं पे स्किप हो गया, ठीक है ना, उसके बगैर ही दीन गालिब आ गया, बस ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, आ करके फिर जो है ना वो पता नहीं क्या करेंगे, वैसे कि फितने दज्जाल तो स्किप हो गया है, अब ईसा अलैहिस्सलाम आके क्या करेंगे भाई? हदीसों में तो ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम आकर के दज्जाल को मारेंगे, तो दज्जाल ने तो आना ही नहीं है, उसने तो अपना इरादा बदल लिया आने का। हम तो ये हमारी सोच बनी हुई है ना कि लगता है दज्जाल ने आने का इरादा बदल दिया है, अब दज्जाल ने कोई नहीं आना, बस इस्लाम ने आना है खाली, अमेरिका में भी इस्लाम, बर्तानिया में भी इस्लाम, और मुसलमान मुल्कों में तो पहले से ही इस्लाम था सब कुछ, ठीक है, तो फिर क्या हम यही समझना चाहते हैं, क्या वाकई हमने बाय कर लिया है इस वाली बात को? ठीक है, रायट्स अगेंस्ट मुस्लिम्स टू प्लेस इन लेस्टर अ फ्यू मंथ्स अगो, द यूके वाइट सुप्रीमेसी गैंग्स क्रिएटेड ह्यूज इश्यूज अक्रॉस द यूके, मुस्लिम्स थॉट फॉर मेनी इयर्स दैट देयर इज हार्मनी, Muslims thought for many years that there is harmony, there is still harmony. वो जो riots थे ना, जो riots जो हुए थे ना यूके के अंदर, वो चंद हर दिमाग और बददिमाग लोगों ने किए थे वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, वो भी अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। वो रायट जो थे ना, दे वर नॉट द ओवरऑल मिजाज नहीं था, दे वर नॉट द मेजोरिटी, ठीक है। इससे आप बाहर निकलें, इस वाली अंडरस्टैंडिंग से आप बाहर निकलें, ठीक है। अब तो आलिमानंद अपनी डॉक्टर भाभी को आगे स्पेशलाइजेशन करने का कहती हैं, जबकि भाभी को आगे नहीं करना। जी बहरा उनकी क्या पीछे तफसील है वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो उसके जाने वगैरह खामा के कॉमेंट्स नहीं दिया करें उनके बारे में, इंडिविजुअली हम ऐसे कॉमेंट्स नहीं दिया करें, हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे लेस्टर हो चाहे लंदन हो, लंदन के अंदर भी तो रमजान लाइट्स जो है, लंदन में कौन से राइट्स हुए थे, ठीक है। मैं तो भाई कुछ और आपको बात ही शायद करता, समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं, हो सकता है आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, पता नहीं। वो कभी बैठेंगे तो इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो अजम्पशन आ गया है ना कि इस्लाम गालिब आ गया है या बस आना ही चाहता है, और दज्जाल का जो फितना है वो स्किप हो गया है, ठीक है ना, और जो है वो बस अब इस्लाम के गलबे का दौर शुरू हो चुका है, और अब जो है ना वो सब ने मिठाई पराठे और आलू और बिरयानियाँ खानी हैं और अल्लाह अल्लाह करना है फिर उसके बाद, ये जो एक जो तसव्वुर इस वक्त फैल गया है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, इससे जो है ना वो जरा हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।